ओम शांति। हम सभी ज्ञान सागर के ज्ञान नदियां ज्ञान संगम युगी त्रिवेणी, उस पर हम ज्ञान की लहरों में लहराते रहते हैं। हम सभी ज्ञान मूर्ति तो हैं, लेकिन ज्ञान मूर्ति के साथ साथ गुण मूर्ति भी बनना है। ज्ञान मूर्ति और गुण मूर्ति। ज्ञान जब अंदर जीवन में उतरता है तो वो गुण बन जाता है। ज्ञान और गुण एक सिक्के के दो पहलू हैं, या ये कहें कि ज्ञान बीज है तो गुण उसका फल है। हम सभी गुणों की धारणा करें, इसके लिए हमें बीच बीच में बाबा मुरलियों के द्वारा अलर्ट करते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले भी बाबा ने एक मुरली की पहली लाइन में ही पूछा कि बच्चे ये पढ़ाई जो तुम पढ़ रहे हो ये किस विषय, इसमें मुख्य विषय कौन सा है। तो जवाब बाबा ने दिया, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हमारी जो पढ़ाई है केवल श्रवण तक नहीं है, लेकिन साथ साथ में प्रैक्टिकल में कितनी आती है, हमने प्रैक्टिकल में उसको कितना जीवंत किया है। ज्ञान भले शब्द है लेकिन वह जीवन में उतर जाता है तो वही चैतन्य हो जाता है। तो हम सभी ये अपने आप को हम चेक करें, हम कितना दिन भर में धीरज के गुण का उपयोग करते हैं। छोटी छोटी बातों में हम उतावले तो नहीं हो जाते हैं, छोटी सी बात के कारण घटना के कारण हम विचलित तो नहीं हो जाते, जरा से असहज किसी के व्यवहार से हलचल में तो नहीं आ जाते। तो स्वयं को जब हम चेक करते हैं कि हम अपने जीवन में कितना दूसरों को सुख दे पाते हैं, कितना हम हरेक का सम्मान करते हैं, कितना हम सभी को एडजस्ट करते हैं जीवन में, वो स्वयं की स्थिति के ऊपर भी निश्चित करता है। अगर हमारी स्थिति ठीक है तो हम कैसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन स्वयं की अगर स्थिति ठीक नहीं है तो हम सहज स्थिति में भी विचलित हो जाते हैं। तो स्वयं को भरपूर रखना, संपन्न रखना, स्थिति को ठीक रखना, ये जिम्मेवारी स्वयं की है। हम छोटी छोटी बातों के कारण, इच्छाओं के कारण खाली होते जाते हैं, इधर ज्ञान योग से भरते भी जाते हैं और इच्छाएं हमको खाली करती जाती हैं। पहले ज्ञान में आने से पहले कोई और इच्छाएं होंगी। बाबा ने कहा, बच्चे दुनिया की तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मुरली में हम सुनते हैं। वो इच्छाएं तो कम हो गई, खत्म हो गई, लेकिन फिर यहाँ की कई इच्छाएं हो जाती हैं। यहाँ जब हम ज्ञान में आते हैं तो विशाल परिवार, विशाल हमारा घर, इसको देखकर हम भी अपनी जो है ज्ञान की जीवन की बनाने की जो हमारा लक्ष्य है उसके साथ साथ हम स्थूल इच्छाओं में भी लग जाते हैं। और जब वो स्थूल इच्छाएं होती हैं, भले अज्ञान काल की इच्छाएं नहीं है, ज्ञान में आने के बाद भी यहाँ के अनुसार भी कई इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, तो उन इच्छाओं से हम तो सोचते हैं तो सभी हैं, हम भी ऐसे ही हैं, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। तो हमारा स्व पर से अटेंशन हट करके और अन्य अन्य बातों पे चला जाता है। स्वयं के ऊपर अटेंशन रखना, स्वयं के ऊपर ध्यान रखना कि मैं इस ज्ञान को कितना अपने जीवन में उतार रहा हूं, स्वयं के ज्ञान के अनुसार स्वयं को कितना चला रहा हूं, ये देखने की बजाय हम और चिंतन में लग जाते हैं। जब नए नए ज्ञान में आते हैं तब तो ज्ञान की नई नई पॉइंट्स मिलती है और उसके अनुसार हम मन को बिजी रखते हैं। अच्छा, आज बाबा ने ये कहा, आज ये कहा, लेकिन जैसे जैसे हम पुराने भी होते जाते हैं तो वो ज्ञान के पॉइंट तो ये समझ लेते हैं कि सुनी हुई है। तो जब सुनी हुई है और ऐसे ही उसको हम साधारण रीति से सुन लेते हैं, सुनने के या तो आदती हो जाते हैं, और बाबा कोई बड़ी चीज भी कह जाते हैं मुरली में तो भी हम उसको सहज भाव से ले लेते हैं, तो वो धारणा में नहीं आती है जीवन के अंदर। जैसे देखिए, रोज जब हम मुरली पढ़ते हैं, मुरली के अंदर कई पॉइंट्स होते हैं, कोई न कोई ऐसा पॉइंट होता है जो धारणा का पॉइंट होता है। स्वयं की धारणा के लिए हमें पता है कि ये हमारी कमजोरी है और निश्चित भी किया हुआ है कि मुझे इस कमजोरी को निकालना है, लेकिन फिर भी बाबा की जो पॉइंट है वो पकड़ना मुरली के अंदर, वो बहुत एक अटेंशन की बात है, अटेंशन रखना होता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छी नाजुक चीज अगर बाजार से आती है तो उसकी पैकिंग कितनी अच्छी होती है, कांच की चीज है या कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जो भी है उसके आप पैकिंग देखो, अंदर क्या क्या लगा होता है, और होती चीज छोटी सी, उसका बॉक्स कितना बड़ा होता है, लेकिन आप उसको कितना सहजता से खोलते खोलते फिर उसको संभालते हैं। तो इसी प्रकार से तो बाबा मुरली के अंदर, भले वो 3 पेज की मुरली है, 3.5 पेज की है या 4 पेज, लेकिन उसके अंदर, उस पैकिंग के अंदर हमें स्वयं के लिए आज मुझे क्या धारण करना है वो रतन निकालना, ये एक बहुत एक सूक्ष्म चीज है। जब हम उस अटेंशन से मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है बाबा मुझे कान में कुछ कह रहा है, ये बात तो बाबा ने मुझे कान में कही और मुझे ही कही। तो उस मुरली को जिसे धारण करने की हमें शक्ति मिल जाती है, उस मुरली को हम सहज रीति से अपने जीवन में उतार लेते हैं। किसी से भी पूछो आज बाबा ने क्या कहा तो कहेंगे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, बस ऐसी ऐसी पॉइंट सुना देते हैं, लेकिन उसमें जो ऐसी स्वयं के ऊपर लागू होने वाली धारणा की गहन पॉइंट है वो पॉइंट नहीं सुनाते। ऐसे ही मुरली को सुन लेते, हाँ भाई मुरली सुन ली, लेकिन उसको हम धारणा में जब उस पॉइंट के प्रति हम अलर्ट रहेंगे तभी हम उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं या उतार सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो अंदर की संपन्नता, भरपूर स्थिति, हमारी अवस्था, ये बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जीवन में गुण, सहनशीलता, धैर्यता, रहम दिल। अब आप सहनशीलता को ही लीजिए, 1 मिनट की सहनशीलता कितनों के जीवन को बचा देती है, या सामने कोई से झगड़ा हो रहा है तो उसमें स्वयं को सहन करने के कारण सामने वाले का जीवन भी बच जाता है और स्वयं भी कई झंझटों से बच जाते हैं। 1 मिनट की सहनशीलता, 1 मिनट की धैर्यता, या कुछ शब्दों की या व्यवहार की नम्रता हमारे जीवन को सुरक्षित कर देती है और हमें अनेक कर्म भोग से बचा देती है। सहन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उस समय यह सोचें कि नहीं, इसने कुछ कहा, कोई बात नहीं, वो पूर्व का हिसाब किताब है, वो चुप्त हो गया, तो उस कारण से हम अपने को धीरज में रखें। जब हम ये सोचते हैं हमारा ही कोई हिसाब किताब के कारण हमें सहन करना पड़ रहा है, तो उससे हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है और सामना करने की शक्ति बढ़ती है। जब हम सोचते हैं हमारा ही कोई कर्म भोगे, तो हम दुख की फीलिंग उस समय नहीं करते। है दुख की परिस्थिति, है कोई ऐसे सहन करने वाली बात, लेकिन उसमें भी जब हम ये सोचते हैं कि नहीं मेरा ही हिसाब किताब है जो मैं चुक्त कर रही हूं आत्मा, तो उस समय हमें धीरज का भी गुण मिल जाएगा, सहनशीलता भी आ जाएगी। अपने आप को हम ये समझें, अपनी बुद्धि को शीतलता के अंदर सुरक्षित रखें। बुद्धि का फ्रिज है शीतलता का गुण। कोई भी बात में जैसे कि शीतलता आ गई, तो जैसे बुद्धि, जैसे फ्रिज में कोई चीज सुरक्षित रहती है, खराब नहीं होती, तो यह मन का कूलर और बुद्धि का फ्रिज। शीतलता का गुण बहुत ही ऊंचा गुण है। राजाओं ने अंतर्मुखता की आंतरिक शांति के लिए और संतुष्टता के लिए, इस गुण के लिए राजाई छोड़ दी। कई ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने राजाई छोड़ दी, क्योंकि अंतर्मुखता में, उस गुण में जो आंतरिक सुख मिलता है और उससे जो संतुष्टता प्राप्त होती है, वो धन संपत्ति या जो दास दासी थे या वो राजाई जो थी, उसमें वो सुख नहीं था, जो सुख उसके अंदर था। तो इस प्रकार से एक एक जो गुण है वो हमारे जीवन को बहुत ही आगे ले जाने वाला है या देवता बनाने वाला है। सर्व गुण संपन्न, कोई भी कमी न हो, कोई भी अवगुण पे हमारी दृष्टि न जाए। अगर अवगुण पे दृष्टि जाती है, माना हमारी स्थिति खराब होती है। आप जब भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय आप पूरा ध्यान रखते हैं कोई बासी तो नहीं है, कोई स्मेल वाला तो नहीं है, या ये जो भोजन है ये हमें शक्ति देगा या कोई और बीमारी पैदा करेगा, पूरा चेक करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि है, मन है, इसका भी भोजन या संकल्प शक्ति हम बहुत ही देख करके, क्योंकि अगर हम किसी के अवगुण या अवगुण देखते रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे जिस अवगुण से आप घृणा करते हैं, जिससे जिस अवगुण से आप नफरत करते हैं कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उनको याद कर करके वो अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो कमी, ये जो कमजोरी है, वो सामने वाले की आपकी कब बन गई ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अपने अंदर हम हमेशा हर एक के गुणों पर ही नजर डालें। अवगुण भी होंगे, लेकिन अवगुण को संभालें और गुणों को हम देखें, गुणों को देखकर हम व्यवहार करें। हमारा जो दृष्टिकोण है, हम गुणग्राही बना लें। हमारी जो वृत्ति है उसके अंदर सबके प्रति शुभ भावना उत्पन्न हो। एक बार कहते हैं कि दुर्योधन को कहा गुरु ने कि आप राज्य में देखो कि कोई अगर अवगुणी हो, कोई गुणवान हो, तो उसकी लिस्ट बना के लाओ। युधिष्ठिर को कहा कोई अवगुणी हो तो उसका नाम मुझे बताओ। दोनों शाम को आए, उन्होंने, दुर्योधन ने कहा अरे इतना मैंने आज दिन खराब किया, एक भी गुणवान नहीं मिला, इससे तो न जाता तो अच्छा रहता, थक और गया। यानी उसकी जो दृष्टिकोण था वो उस प्रकार का था। युधिष्ठिर आया, उसने कहा गुरुजी मुझे तो कोई अवगुणी मिला ही नहीं, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर थे, हर एक में कोई न कोई विशेषताएं थी, हर एक जो है उससे मैंने गुण ग्रहण किया, मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मेरा दिन सफल हो गया। तो इस प्रकार से तो हम दूसरों के प्रति जिस प्रकार से हम दृष्टिकोण रखेंगे, ऐसा ही हमारा भी, हमारे अंदर जैसा भी दृष्टिकोण वृत्ति होगी, वैसा ही हम दूसरे को देखेंगे और वैसा ही दूसरों से व्यवहार करेंगे और वैसा ही जीवन में आपको उनसे प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अपने स्वभाव को बदलने के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बन जाती हैं। आज एक ही धरती होती है, उससे उसी धरती से गन्ना जो है वो मिठास प्राप्त करता है और मिर्ची जो है अपने स्वभाववश अपना टेस्ट दूसरा प्राप्त करती है। धरती एक ही है लेकिन स्वयं के बीज, स्वयं के संस्कार भी इसमें लागू होते हैं कि हम सामने वाले से क्या प्राप्त कर रहे हैं। अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार हम दूसरों से भी वही प्राप्त करते हैं जैसा हमारा स्वभाव है। अगर हमारा स्वभाव नेगेटिव है तो हम दूसरों से भी जो प्राप्त करेंगे वो नेगेटिव ही उसमें से ढूंढ के निकाल के और देखते रहेंगे। और अगर हमारा स्वभाव पॉजिटिव है तो हम हर एक में नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ के और उससे हम पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे अंदर हमारा स्वभाव, हमारी स्थिति हम ऐसी बनाएं। एक बार की बात है, एक गांव वाला गांव के अंदर बाहर खड़ा हुआ था। दूसरे गांव का व्यक्ति आया, उसने पूछा कि भैया यहाँ के गांव के लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा यहाँ के गांव के लोग, आप पहले बताओ आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं? उन्होंने कहा वहाँ के लोग तो इतने खराब हैं, इसीलिए मैं वहाँ से यहाँ आना चाहता हूँ। उसने कहा यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है जो आपने सुनाया। और उसमें थोड़ी देर बाद वो चला गया और दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने कहा आप जहाँ से आ रहे हैं वो कैसे? और बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सहयोगात्मक दृष्टिकोण वाले हैं, बहुत ही उन वहाँ वो तो मैं एक थोड़ा सा पास में गांव है इसलिए यहाँ भी थोड़ा व्यवहार और बिजनेस करना चाहता। उसने कहा यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, सहयोगी हैं। तो कहने का मतलब, जो तीसरा व्यक्ति खड़ा था उसने कहा एक को आपने ये जवाब दिया एक को ये, उसने कहा वो जो व्यक्ति है वो अपने स्वभाववश वैसा ही यहाँ देखेगा और जो दूसरा अच्छा आया है वो अपने स्वभाववश यहाँ भी अच्छा ही देखेगा। तो हमारे अंदर हम स्वयं को बदलें। कई बारी क्या होता है कि कभी कोई परिस्थिति या कोई बात होती ना तो कहते हैं वो बदल जाए, फलाना बदल जाए, हे भगवान, हे रे, ऐसा अंदर में संकल्प उठता है। कभी ये संकल्प नहीं उठता कि मैं बदल जाऊं, बाबा आप तो बस, मेरा संकल्प है मैं अपने को बदल लूं। जब वो हथौड़े मारता रहेगा, कहते ना 18वें हथौड़े में दीवार टूटी तो 17 व्यर्थ थोड़ी गए। तो अगर हम अपने अंदर में ये संकल्प चलाते रहेंगे कि नहीं मुझे बदलना है, तो कभी न कभी वो जो संकल्प है ना वो मजबूत हो जाएगा। जैसे एक धागा है, एक धागे में दूसरा तीसरा 10-15 धागे मिला लो, उसको तोड़ना कठिन हो जाएगा। तो हम संकल्प तो रचे, संकल्प की हम रचना तो करें कि नहीं मुझे बदलना है। तो कोई भी चीज को बनाने के लिए हर उसमें जो है आवश्यकता लगती है। आप चाय बनाओ, भोजन बनाओ, हर चीज, नमक मिर्ची वो सब, तो हर एक पुरुषार्थ इसमें चाहिए। चारों हमारे विषय जो है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना, त्याग, तपस्या, सेवा, हर चीज चाहिए। और सारी जो चीजें जो इकट्ठी बन के तैयार होती है उसको दिव्य गुण कहते हैं। केवल एक ही विषय से दिव्य गुण तैयार नहीं होता है, हर चीज का जब हम सहयोग लेते हैं तब हमारे अंदर वो दिव्य गुण, और ये जो दिव्य गुणों की एनर्जी है वही हमारे साथ जाएगी, वही सतयुग की टिकट है। अगर ट्रेन में बैठो और टिकट ही ना हो तो यहां जो है हम अपनी स्थिति को ठीक रखें, अपनी स्थिति को हम ठीक बनाएं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए। मुरली सुनो तो भी, योग करें तो भी, सेवा करें, तो हर एक चीज में हमारा लक्ष्य यह हो कि मुझे स्थिति अपनी दिव्य गुण मूरत। जब हमारे को डिग्री चाहिए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उसी एक तरफ हमें दिशा में काम करना पड़ेगा। जैसे आप देखो उसी दिशा में हमें चलना पड़ेगा, उसी दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा। अर्जुन के लिए पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उसने कहा मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो माना उसने, उसको केवल लक्ष्य दिखाई दे रहा था, न पहाड़ न जंगल न नदी न पेड़, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, केवल पक्षी, पक्षी की आंख। तो हमारी जो, हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, हमारा जो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, पहले तो लक्ष्य निश्चित हो जाए। हम यहां किस लिए आए हैं, हम बाबा के किस लिए बने हैं, हम ज्ञान में किस लिए आए हैं। तो जब इस प्रकार का हमारा मनन चिंतन होगा तो हमारी स्थिति वैसी बनती जाएगी। तो ऐसे जब हम संकल्प करेंगे तभी बाबा का हमें वरदान प्राप्त होता है। जब तक हम संकल्प नहीं करें तब तक हमें वो वरदान प्राप्त नहीं होता है, हमारी आत्मा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जैसे आज वो स्लोगन मिलता है, स्लोगन मिलता है तो खुश होते हैं कि मुझे बाबा का ये वरदान मिला, तो सोचते हैं ये मिल गया, वरदान मिल गया। मिल नहीं गया, लेकिन उस वरदान को हम जितना स्मृति में रखेंगे उतना वो वरदान हमारे ऊपर लागू होगा। अगर हम उसको केवल लिया और रख लिया, हमारा पूर्व का पुरुषार्थ के अनुसार मिला ऐसा समझ करके रख लेना केवल, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन ये मुझे बनना है, ये मेरी स्थिति है, ये मेरी अवस्था है, इस रीति से स्वयं को सावधान रखना कि मुझे ऐसा ही बनना है, बस इसी स्थिति में रहना है। तो पॉइंट चल रही थी, हमारी स्थिति ही हमारे साथ जाएगी। स्थिति पर ध्यान रखना, उसकी जिम्मेवारी हमारी स्वयं की होती है। हमारे जो भी हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, सुनते हैं, हर एक चीज का असर हमारे आत्मा के ऊपर होता है, टेप होता जाता है। हर एक चीज का अपने अंदर में हम ये सावधानी रखें कि कुछ गलत तो टेप नहीं हो रहा। जब कोई टेप किया जाता है तो बड़ी शांति रखी जाती है, बड़ा ही साउंड प्रूफ स्थान पर। और आजकल तो जैसे एक हम अपन देखते ही हैं, जैसे लीड लगा देते हैं तो इधर का उधर टेप भी हो जाता तो पता नहीं, आवाज भी नहीं आता। तो इसी प्रकार से हमारी जो आंतरिक स्थिति है वो बहुत जैसे गुणग्राही, और हमारे अंदर परिस्थिति को हम जब पेपर हॉल समझते हैं तो स्वयं को अलर्ट रखते हैं। कोई भी परिस्थिति आ गई तो पेपर हॉल है, हमें पेपर देना है, तो उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, स्थिति हम क्या, हमें करना, इस समय ब्रह्मा बाप होते तो क्या करते, इस समय मम्मा होती तो क्या करती, एक योगी हूं मैं, तपस्वी हूं, उस स्मृति में निर्णय लेना चाहिए। ऐसे ही नहीं, साधारण स्थिति में निर्णय लेंगे तो निर्णय गलत हो सकता है, लेकिन हमारी जो स्थिति है ज्ञानी योगी, तभी हम निर्णय भी ठीक से ले सकते हैं। अगर कोई सहन करने वाली बात आती है तो ये सोचना चाहिए कि जैसे कोई एक कलाकार छेनी हथौड़े से कैसे अच्छी मूर्ति बना देता है, हो सकता है कि ये परिस्थितियां ही जैसे हम देवताओं को अच्छी रीति से घड़ रही है। ये छेनी हथौड़े, इनके लिए ये नहीं सोचना ऐसा है वैसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो हमारी जो आत्मा की शक्ति वो क्षीण होती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि मैं देवता मंदिर की मूर्ति बन रहा हूं, एक पत्थर की मूर्ति, केवल एक पत्थर के मंदिर में रखने के लिए उसको कितने छेनी हथौड़े सहन करने पड़ते हैं, तो मैं भी जैसे चैतन्य देवता बनने वाला हूं तो मुझे हर परिस्थिति में स्वयं को खुश रखना है, हर परिस्थिति में स्वयं की स्थिति को ठीक रखना है। समुद्र के किनारे पर जो पत्थर होते हैं, थपेड़े लग लग करके शालिग्राम बन जाते हैं, वो भी कैसे गोल हो जाते हैं, वो भी मंदिर के शिवलिंग बन जाते हैं। तो हमें कोई भी परिस्थिति में ये सोचना चाहिए कि हम मजबूत हो रहे हैं, स्वयं की स्थिति को हम थोड़ा अटेंशन रखते हैं। इसके अंदर हमें ये समझना चाहिए, रोज की मुरली में हम जब मुरली सुनते हैं तो मुझे रॉयल चाल चलन रखने हैं, अपनी दिनचर्या सेट रखनी है, ठीक रखनी है, उस पर अटेंशन रखना है। हमारे जब हम देवता बन रहे हैं तो हमारा बोल चाल व्यवहार, हमारे विचार बहुत ही जैसे श्रेष्ठ होने चाहिए, हर एक गुण हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे सरलता का गुण है, सहज, हम हर परिस्थिति में सहज बन जाएं, भले वो संगठन के बीच हो या सेवा में सहज बन जाएं, संगठन में सहज बन जाएं, व्यवहार में सहज बन जाएं, संबंधों में भी हम सहज रहें, टिपिकल नेचर, जटिल नेचर ना हो, कोई कुछ कह न सके, ऐसा भी नहीं अरे इसको कुछ कहेंगे ना तो बस पता नहीं क्या होने वाला है, यानी जटिल नेचर नहीं हो, स्वभाव हमारा सरल। नम्रता का गुण, जो आत्मा जितनी भरपूर होगी ना वो उतनी नम्र होगी। आपने पेड़ देखा होगा, कितना भरा हुआ लदा हुआ पेड़, उसकी जो डालियां हैं वो कैसे नीचे झुकती जाती हैं। तो इसी प्रकार से हम जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, रोज की मुरली का मनन चिंतन करेंगे, तो हमारे अंदर वो सहजता का गुण सहज आता जाएगा। शिष्टाचार, रहम दिल, हरेक को सम्मान देना, ब्रह्मा बाबा के अंतिम बोल 18 जनवरी पे जरूर याद आते हैं, संपूर्ण निराकारी, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण निरअहंकारी। ये तीनों जो बोल हैं वो हमारे अंतिम रिजल्ट ब्रह्मा बाप की भी रही तो हमारे भी स्थिति ऐसी ही होनी चाहिए। हम रोज निराकारी स्थिति का अभ्यास कितना करते हैं, केवल रूहान में या कोई फरिश्ता स्थिति में तो काम नहीं चला लेते, बिंदु रूप स्थिति हमारी कितनी होती है, कितनी रहनी चाहिए, वो मुख्य चीज है। तो इसके अंदर निरअहंकारीपना कितना है हमारे अंदर। दूसरी बात यह है कि अभी 31 तारीख की जो मुरली थी, 31 दिसंबर सीजन की मुरली नए वर्ष की, बाबा ने उसके अंदर हमें प्रैक्टिस के लिए जो कहा, कम से कम 1-1.5 तेज प्रैक्टिस करनी है, अतिंद्रिय सुख में लंबे समय रहने की प्रैक्टिस, उस प्रैक्टिस को करने के लिए अभी हमें ये मधुबन का आंगन मिला हुआ है। हम इधर उधर बातों में या बगीचे में इधर उधर बैठकर या कमरे में इधर उधर की बातें करके या सेवा करते हुए भी हम दूसरी बातों का चिंतन न करें, लेकिन 31 तारीख की जो मुरली थी, शुरू शुरू में तो बाबा ने कहा बच्चे मेरा बाबा, मीठा बाबा, बच्चों को पाठ पक्का कराया, लेकिन बाद में जो बाबा ने प्रैक्टिस की बात कही, पूरा 1-1.5 पेज, इतना यानी कि गंभीरता से बाबा ने कहा कि लंबे समय की सुख की प्रैक्टिस चाहिए। और आखिरी में बाबा ने एक लाइन कही, ये क्यों बाबा कह रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा समय आने वाला है, ये प्रैक्टिस आगे काम में आएगी। ये तो सबको पता है कि अभी स्थितियां दुनिया की बिगड़ रही हैं और विनाश की स्थिति भी नजदीक आ ही रही है, और अंतिम घड़ी में दुख की ही परिस्थिति होती है, दुख की ही घटना होती है। जब भी किसी का भी शरीर छूटता है तो अंतिम स्थिति जरूर सबसे कड़ा पेपर होती है। तो वो अंतिम स्थिति जो कड़ा पेपर है, वो हर एक को पास करना है। जब ज्ञान नहीं था तब तो हम उस अंतिम पेपर को याद भी नहीं करते थे, कोई बात भी करता था उसको चुप कर देते थे, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यही है कि अंतिम पेपर आने वाला है, और उसके लिए बाबा ने एक नया शब्द इस मुरली में यूज किया है, सुख। बाबा हमेशा शांति कहते हैं, प्रेम, आनंद, शक्ति, लेकिन सुख की अनुभूति जब तक लंबे समय की हमारे अंदर नहीं होगी, तो अंतिम घड़ी जो दुख की आएगी, तो उस दुख की परिस्थिति का सामना हम अपना जो स्टॉक जमा किया होगा अतिंद्रिय सुख का, उस वो सुख ही उस समय काम में आएगा, वो सुख ही उस समय काम में आएगा अंतिम समय में। इसीलिए बाबा ने 1.5-1.75 पेज जो कहा, प्रैक्टिस, अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास। तो हम यहाँ बाबा के घर में आए हैं, 18 जनवरी बाबा आएंगे, तो उसके पहले हमारी स्थिति जो बाबा होमवर्क देकर गए हैं 31 दिसंबर को, तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, आत्मिक सुख की अनुभूति लंबे समय की, वो जरूरी नहीं है कि आपको केवल योग तो थोड़ी देर का ही टाइम मिलता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको चलते फिरते बैठे सबकी भीड़ में भी ये संकल्प याद करना पड़ेगा कि बाबा ने 31 तारीख को क्या होमवर्क दिया है। जब तक वो होमवर्क याद नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे, तो बाबा के सामने जब हम बैठेंगे 18 जनवरी को, तो हम बाबा वो रिजल्ट देख रहा है, बाबा को तो और कोई काम नहीं है, आप लोगों को तो काम है भाई, चलो भोजन भी जाना पड़ता है, भोजन पे भी इधर भी उधर भी शरीर के साथ है, लेकिन बाबा जो है वो तो केवल आपको ही देख रहा है। जैसे एक होता है ना, मैनेजर होता है, उसके पास में कंप्यूटर में दिखता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किस प्रिंसिपल है पूरे स्कूल के, इस हर क्लास में कौन पढ़ा रहा है, क्या हो रहा है, सब दिखता है। तो ऐसे ही बाबा भी हर एक को चेक करता है। बीच में बाबा ने कहा बच्चे मैं देखता भी हूं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, हम यहां आए हैं, पर कई बारी क्या होता है कि सेवा करते करते क्या बात करें, तो लौकिक बातें भी करने लगते हैं, काम करते करते भी लौकिक बातें हमने सुना, चलते चलते तो ये तो लौकिक बात कर रहे हैं या तेरी मेरी, नहीं। ये मौन दिवस, मौन मास चल रहा है और ये हमारा जो है शांति वन में हम गहन शांति की अनुभूति करें और फरिश्ता स्थिति बनाए रखें, तभी वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हम कर सकेंगे। ये हर एक की जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी जिम्मेवारी नहीं। हर एक ये सोचे कि बाबा ने मुझे होमवर्क दिया है कि मुझे मुख का और मन का मौन रखना है, मुझे बाबा देख रहा है, मेरे पास वो सीसी कैमरा साथ में लगा हुआ है और बाबा मुझे हर मिनट चेक कर रहा है, मेरे संकल्पों को भी चेक कर रहा है, मेरी भाव भावनाओं को, भंगिमाओं को, हर एक को बाबा देख रहा है। और मैं किसका बच्चा हूं, मैं किसका स्टूडेंट हूं, मुझे क्या होमवर्क मिला है। जब तक हम स्वयं को नहीं देखेंगे तब तक हम स्वपरिवर्तन कर नहीं सकेंगे। और ये स्वपरिवर्तन ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी तक तो हम ये सोचते वो बदला के नहीं, वो कितना बदला, इसमें समय और शक्ति एनर्जी खर्च करने के बजाय हम स्वयं के प्रति वही शक्ति को बचा करके स्वयं के परिवर्तन के लिए। संकल्प तो एक ही चीज है, एक ही संकल्प है, मन एक ही है और उसमें एक ही संकल्प चलेगा। अगर वो परिवर्तन हो जाए, ये संकल्प चला तो मन खाली नहीं रहेगा, सामने वाला तो बदल जाएगा, सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन मुझे बदलना है, ये जो कार्य है वो पेंडिंग रह जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्प शक्ति तो दूसरों को बदलने के लिए ही खर्च हुई ना। तो स्वयं के लिए भी स्वयं को परिवर्तन करना है, स्वयं के लिए भी समय देना है। इसीलिए तो बाबा मुरली में कहते हैं स्वसेवा और विश्व सेवा। स्वयं का भी संकल्प हम ये मजबूत करें, चेकिंग करें और फिर चेंज करें। तो इस बार की जो मुरली थी 31 दिसंबर की, उसको एक बार आधे एक पेज के बाद वाली, डेढ़ पेज के बाद वाली सभी एक बार नहीं लेकिन कई बार पढ़ें, एक सप्ताह में एक बार आखिरी के, क्योंकि बाबा की मुरली इतनी गुह्य है, वो एक बारी सुनने से नहीं समझ में आती। कई लोग सोच लेते हमने टीवी पे बाबा को देख लिया या बाबा आए थे तब मुरली सुन ली, या कई लोग फिर वो मोबाइल पे भी वो देख लेते हैं, वो ऐसा लाइन चलती रहती है। लेकिन मन को भी तो सोचने के लिए हमें समय देना है ना, वो लाइन चलती रहेगी, उसको पढ़ लिया तो उसको रिलैक्स, मन रिलैक्स नहीं होता है, मन आराम महसूस नहीं करता है उसमें, क्योंकि लाइन चलती रहती है, उसको दूसरा पढ़ना है। जब दूसरा पढ़ना है तो पिछला जो है वो शब्द तो उसके लिए टाइम नहीं है, उसके पास भाग रहा है मन। तो हम मुरली को लें, पढ़ें, एकांत में बैठें और आखिरी का एक पेज 8 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार, कहीं ऐसा ना हो वो होमवर्क हम भूल जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम खाली रह जाएं। और दिव्य गुण धारी तो तभी बनेंगे जब हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे और अंतिम स्थिति में हम फरिश्ता बनेंगे, और फरिश्ता ही दिव्य गुण धारी हो सकता है। जब तक हम ज्ञान योग का मनन चिंतन नहीं करेंगे तो हमें दिव्य गुण भी धारण नहीं होंगे। रोज की मुरली के प्रति भी हम अटेंशन रखें, रोज की मुरली से भी हम कुछ न कुछ गुण निकालें। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा मुझे याद करो, 84 जन्म हुए, ये वो सब नहीं। बाबा ने मुझे मेरी कमी कमजोरी के लिए भी इसमें कुछ न कुछ पैकिंग करके थोड़ा हीरा भेजा होगा। रोज रोज बाबा हीरा भेजता है हर एक के लिए, उसमें हीरे को ढूंढ करके और अपने ताज में जड़ो, तब हम दिव्य गुणधारी देवता बनेंगे। एक मुरली थी, बाबा ने कहा हाथ का कंगन, मस्तक, गले का हार। तो ऐसे ये सोचो कि ये श्रृंगार जो है संगम युक्त ही करना है, नैनों का, मन का, संकल्प, तभी तो हम कहेंगे ना सत्युग में देवता। तो दिव्य गुणों की धारणा में हर एक गुण, वैसे गुणों की लिस्ट बहुत लंबी है, उसको आप पढ़ो और वो चेक करो कि मेरे अंदर रहम दिली है कि नहीं, मैं सबको सम्मान देता हूं या नहीं, मेरे अंदर नम्रता कितनी है, मेरे अंदर आज्ञाकारिता कितनी है, मेरी जो स्थिति है वो इन सब गुणों में खरी उतरती है, मर्यादा में मैं कितना रहता हूं। तो हर एक गुण को हम अपने ऊपर लागू करके देखें कि मैं ऐसा बना हूं, इस गुण में और क्या क्या चीज चाहिए जो मेरे जीवन में होनी चाहिए। अंतर्मुखता, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, रहम दिली, पवित्रता, हर्षित मुखता, मेरी जो अपनी मन की स्थिति वो हर्षित रहती है सदा। आज की मुरली सुनने के बाद मेरे अंदर हर्षित मुखता कितनी आई, मेरे अंदर इस गुण का विकास कितना हुआ। फिर दिन भर भी हम उसके लिए अटेंशन रखें, वरदान स्लोगन भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमारी स्वयं की चेकिंग उस मुरली से जुड़ जाए तो फिर सोने में सुहागा हो जाएगा, हमारी स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी और ऐसे हम देवता बनेंगे। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य ये है, हमारा ज्ञान में आने का लक्ष्य ये है, भविष्य योजना हमें देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है। तो पूरा अटेंशन हम स्वयं के ऊपर ऐसा रखें तो जरूर है कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, जो मुख्य पढ़ाई है, बाबा ने मुरली में कहा था मुख्य पढ़ाई कौन सी है, पढ़ाई में भी मुख्य विषय कौन सा है, तो बाबा ने फिर ये कहा, सारी पढ़ाई हम पढ़ लेते हैं और दिव्य गुणों की धारणा की चेकिंग स्वयं के लिए जहां करना वहां हम पीछे रह जाते हैं। नहीं, हमें स्वयं को चेक करके और चेंज भी करना है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये अटेंशन का पहरेदार बिठा दो अपने अंदर में, स्वयं के प्रति अटेंशन का पहरेदार बिठा दो। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े वीआईपीज होते हैं ना, उनके पीछे कमांडो रहता है, बंदूक लिए हुए, तो ऐसा आपने साथ रखो कि कोई भी माया का असर हमारे ऊपर ना हो, कोई नेगेटिव बात, कोई संकल्प, कोई विचार, स्वभाव हमारे अंदर घर न करे, हमारे ऊपर असर न डाले। तो अपने साथ में अटेंशन का पहरेदार नहीं, अभी तो कमांडो की जरूरत है, पूरा अटेंशन, तब जाकर के हमारी सुरक्षा हो सकती है हमारी अवस्था और स्थिति की, और ये स्थिति ही हमारी साथ में जाएगी। अच्छा, ओम शांति। दिव्य